ओम शांति। विदेश में एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, अंग्रेजी की लिखी हुई, जिसका कवि अज्ञात है। पता नहीं किसने वो कविता लिखी है। कईयों का नाम है, परंतु वास्तविक कवि कौन है ये पता नहीं। उस कविता में कवि अपने जीवन की एक घटना सुनाता है। वह कहता है, एक रात मैं सोया और मुझे एक स्वप्न दिखा। उस स्वप्न में मैंने देखा एक सागर का किनारा और जिसमें मुझे अपना संपूर्ण जीवन दिखा, कि जिसमें मुझे अपने पदचिन्ह दिखे उस सागर के किनारे में, उस रेत पर दो पैरों के चिन्ह। मैं चल रहा था जीवन में और वो मेरे पदचिन्ह थे। जब जीवन के अंत में पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि भगवान हमेशा मेरे साथ था। हमेशा चार पदचिन्ह थे, दो मेरे और दो उसके। परंतु जब जब जीवन में कठिनाई आई, जब जब जीवन में परिस्थिति आई, जब जब जीवन में विघ्न आए, जब जब बहुत विकराल सी घटनाएं हुई, तब तक केवल दो ही पदचिन्ह। जबकि जीवन की शुरुआत में प्रभु ने मुझसे वायदा किया था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, के लिए हमेशा चार पदचिन्ह थे। भगवान उसके साथ साथ चल रहा था, परंतु जीवन के अंत में जब मुड़कर देखा उस साहिल पर, उस किनारे पर, उस रेत पर केवल दो ही पदचिन्ह तब थे जब जीवन में बहुत बड़ी परिस्थिति आई, तो सोचने लगा कि भगवान ने यह वायदा किया था सदा साथ चलने का, और वो मेरे साथ था भी, परंतु तब तक वो कहां चला गया जब जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। तब वो कहां चला गया जब वो मुझे चाहिए था। तब तो मैं अकेला ही हूं, केवल दो ही पदचिन्ह दिख रहे, वो है ही नहीं मेरे साथ। क्या यही तुम्हारा वायदा था, भगवान से पूछता है प्रभु, क्या यही तेरा वायदा है कि जब जीवन में परिस्थिति आ जाए तब मुझे तू छोड़कर चला जाता है। भगवान उससे कहते हैं, हे प्रिय आत्मन, मैं तुम्हारे साथ सदैव था, और जब जब तुम्हारे जीवन में परिस्थिति आई और जो पदचिन्ह तुम्हें दिख रहे हैं वो तुम्हारे नहीं मेरे थे, मैं तुम्हें अपने कंधों पर बिठा कर चल रहा था। फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड नाम की यह कविता है, आज सुबह की अव्यक्त मुरली। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ जाएंगे। भगवान का वादा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। साथ रहना, साथ चलना, साथ सैर करना, साथ घूमना, साथ फिरना, साथ देखना, साथ साथ सेवा करना, साथ साथ ज्ञान डांस करना, साथ साथ रास करना, साथ साथ झूमना, साथ साथ भोजन बनाना, साथ साथ भोजन खाना, साथ साथ सेवा करना, साथ साथ ज्ञान सुनाना, साथ साथ ड्राइव गाड़ी चलाना, साथ साथ बाप का परिचय आत्माओं को देना, साथ साथ पीना, साथ साथ हर स्थान पर जाना, साथ साथ रात में सोना, साथ साथ बाप के साथ अंत में घर चलना, साथ 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 भगवान के साथ का अनुभव। बहुत सुंदर गीत है यज्ञ में, मेरे संग संग चलते बाबा। तो सभी योग्युक्त होकर बैठेंगे, गीत बजेगा और उस गीत में अनुभव करना है कि बाबा मेरे साथ साथ चल रहा है, बाबा मेरे साथ साथ है, वो मेरा खुदा दोस्त है, मेरा हाथ उसके हाथों में है। तो सभी चले और इस अनुभव में खो जाएंगे।
मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा,
मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।
जैसे गगन में चांद चलता है चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है।
मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा,
मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह, मेरा मन बहलाते हैं बाबा,
मेरा मन बहलाते हैं बाबा।
जैसे सुरों में सरगम बजता है बजता है,
मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।
तो आज की अव्यक्त मुरली सुनी है सभी ने, सुनी है ना, और पढ़ी किस किस ने है, पढ़ी किस किस ने है, हाथ खड़ा करेंगे, एक और दो, चार पेज की अव्यक्त मुरली है, किस किस ने पढ़ी है, सुनी है, पर सुनी भी नहीं है, लिखी किस किस ने है पॉइंट्स, आज के व्रत मुरली में बाबा स्नेह का रिस्पॉन्ड देने आए हैं। क्या करने आए हैं? स्नेह का रिस्पॉन्ड देने आए हैं। तुमने उसे स्नेह से पुकारा, संसार की सभी आत्माओं ने पुकारा, तो बाबा कह रहे बाप आज आए हैं। ये मुरली में वर्णन है सावित्री दादी का, 82 की ये मुरली है। सावित्री दादी और उनके युगल दादाराम भाई लखनऊ में रहते थे, सिंधी परिवार। वहां पर उन्हें शांतामणि दादी और चंद्रमणि दादी द्वारा, शायद चंद्रमणि परंतु शांतामणि दादी द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ब्रह्मा बाबा स्वयं इनके घर लखनऊ में 10 दिन तक रहे थे। बाद में ये परिवार हांगकांग चला गया जब दादाराम भाई ने शरीर छोड़ दिया। हांगकांग में बहुत बड़ी सेवाएं हुई, 1955 के बाद की ये बातें हैं। मुरली 82 की है, मुरली है क्रिसमस की, 25 दिसंबर की, जबकि सावित्री दादी और उनका सारा परिवार, लौकिक परिवार, बाबा से मिलने आया था। बाबा के उस सीजन की ये मुरली है जिसमें बहुत सारे डबल विदेशी भी बैठे हुए हैं, मधुबन निवासी बैठे हुए हैं, सावित्री दादी और उनका परिवार है। तो खास बाबा सावित्री दादी से मिल रहे हैं, उनके परिवार वालों से मिल रहे हैं। अभी भी उनके परिवार के कुछ सदस्य हैं, अथक सेवाधारी। जब लंदन का सेंटर इधर खुला दादी जानकी के द्वारा, उधर सावित्री दादी और उनका परिवार निमित्त बना उधर के सेंटर के लिए, हांगकांग के सेंटर के लिए। और जब भी ये इतने ज्यादा सहयोगी थे और बहुत अमीर थे, यज्ञ में हर साल बहुत कुछ लाके देते थे, शायद एक साल ना आ पाए थे एक सीजन में, तो ये दूसरे सीजन में आए, तब बाबा विशेष इनके परिवार से मिल रहे हैं। सारी मुरली में उनका वर्णन है। पर्सनल मुलाकात है सावित्री दादी से, पर्सनल मुलाकात है उनके लौकिक परिवार वालों से। बाबा दीदी दादी से भी मिल रहे हैं मुरली में, बाबा डबल विदेशियों से मिल रहे हैं, बाबा मधुबन निवासी और बाकी जो भाई बहने हैं उनसे मिल रहे हैं। मुरली चली है 25/12/82 मेडिटेशन हॉल पांडव भवन में। तो इस मुरली में आज सुबह बाबा कह रहे हैं, बाबा बच्चे बाप के स्नेह का गीत गाते हैं। और बाप किसका गीत गाते हैं? बच्चों के गुणों का गीत गाते हैं। बच्चे कहते हैं ऐसा बाबा और कहीं नहीं है, और बाबा क्या कहते हैं? ऐसे बच्चे और कहीं नहीं है। बाबा कहते थे कि यह तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हें बाप मिला। दादी प्रकाशमणि बाबा से कहती थी, बाबा आपको भी हमारे जैसे बच्चे और कहीं नहीं मिलेंगे, जाओ जाके ढूंढो संसार में, हमारे जैसे बच्चे आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। कितनी अच्छी बाबा मुरली की शुरुआत करते हैं हमेशा। बाबा कहते हैं बचपन का वायदा याद है ना, साथ रहने का, साथ चलने का, साथ फिरने का, साथ घूमने का, सब कुछ साथ 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 करने का, इस वादा को भूल ना जाना। हर चीज उसके साथ, चलना उठना बैठना घूमना फिरना सोना गीत गाना सेवा करना सब कुछ। बाबा ने मुरली में एक वरदान दिया है। कौन सा वरदान दिया है? कंबाइंड स्वरूप भव, कंबाइंड अर्थात सहजयोगी, कंबाइंड अर्थात सदा साथ रहने वाले। दो नहीं एक, साथ साथ संयुक्त रहने वाले हो, उड़ते फरिश्ते हो, कहीं कहां ट्रस्टी हो, परिवार से मिल रहे हैं उनके तो उनसे बहुत सारी चिटचैट बाबा कर रहे हैं। बाबा ने मुरली में एक स्लोगन भी दिया है, एक ब्लेसिंग दी है, एक स्लोगन दिया है और चार गिफ्ट दी है। वरदान है कंबाइंड स्वरूप भव, उसके साथ स्वयं को महसूस करना है जैसे वो और मैं एक हूं। जैसे भागवत में दिखाया है गोपियों की अवस्था, उद्धव आता है उधर से, कृष्ण भेजते हैं उद्धव को कि जाओ गोपियों को ज्ञान सुनाओ। उद्धव बहुत ही ब्रह्मज्ञानी है और उसे घमंड भी है अपने ज्ञान पर, तो वो पहुंचता है यमुना पार करके, परंतु जैसे ही यमुना पार करता है उसे गर्मी होने लगती है क्योंकि उसके पास तो ज्ञान की गर्मी थी, परंतु गोकुल में तो प्रेम की अग्नि जल रही थी। वो जाकर गोपियों को समझाता है, अरे तुम ये क्या कर रही हो, जिसको तुम साधारण सा कृष्ण समझती हो वो कोई साधारण नहीं, वो तो स्वयं साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक, स्वयं अवतार है, ब्रह्म है। वो कहती है हमें कुछ पता नहीं, कृष्ण हमारे साथ यहां खेला था, वो हमारे साथ यहां खेला था, वो हमारे साथ यहां उसने रास की थी। इतना वो 6 मास बिताता है उनको ज्ञान समझाने में, परंतु वो तो प्रेम में डूबी हुई है। कोई गोपी कृष्ण की तरह बांसुरी बजा रही है, कोई गोपी कृष्ण की तरह बैठी हुई है। कृष्ण गाती गीति कृष्ण ध्याति चित्ति हे ची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने, कृष्ण का ध्यान करते करते कृष्ण का गीत गाते गाते हे ची कृष्ण होती स्वयं ही कृष्ण हो गई, कृष्ण जैसा बिहेव करने लगी, कृष्ण जैसा गाने लगी, कृष्ण जैसा झूमने लगी। एक गोपी कृष्ण बन रही है, दूसरी गोपी बन रही है। ऐसी भाव विभोर अवस्था है गोपियों की, और उद्धव उन्हें समझा रहा है ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। वो कहती हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम क्या करेंगे ये सब जानकर, हमें ये सब बातें मत बताओ। उद्धव 6 मास रहता है और लास्ट में साष्टांग दंडवत करके वापस लौटता है, हार हो जाती है उसकी। किसको वो समझाने आया है? गोपियों तो उनकी जो अवस्था है इतनी ऊंची अवस्था है। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक पराभक्ति एक अपराभक्ति। गोपियों की जो भक्ति है अपराभक्ति है, सर्वोच्च सुप्रीम पराभक्ति है। अपरा जो होती है वो निचली भक्ति है। भक्ति 5 प्रकार की और होती है। एक दास्य भक्ति, जिसमें भक्त अपने आप को ईश्वर का दास समझता है जैसे हनुमान और राम। दूसरी सखा भक्ति, जिसमें वो अपने आप को भगवान का दोस्त जैसे अर्जुन और कृष्ण, सुदामा और कृष्ण। तीसरी भक्ति शांत भक्ति, जिसमें साधु संत समझते हैं इस संपूर्ण सृष्टि का मालिक वो है, वही करता है। चौथी वात्सल्य भक्ति, भगवान को क्या बना देना, अपना क्या बना देना, छोटा सा बच्चा, उसका ध्यान रखना, उसको भोजन खिलाना, उसको सजाना, उससे बात करना, उसको लोरी सुनाना जैसे कि वो है। यशोदा और श्री कृष्ण, कौशल्या और श्री राम। और 5वीं भक्ति है एक मधुरा भक्ति। मधुरा भक्ति अर्थात भगवान को अपना पति समझ लेना। भक्ति और 2 प्रकार की है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। निष्काम अर्थात कोई कामना नहीं है। गीता में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है, आर्थी अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। एक भक्त है जो तभी भगवान के पास जाता है जब जीवन में कठिनाई आती है, वैसे नहीं जाता है। जब संकट आता है तो हे प्रभु बस तुम ही सब कुछ हो। दूसरा भक्त है रोज जाता है परंतु संसार की चीजें मांगता है, घर दे दो, बंगला दे दो, पति दे दो, पत्नी दे दो। भगवान कहते फिर भी ये मेरे ही भक्त है। तीसरा भक्त है जिज्ञासु भक्त, गीता चौथा अध्याय है। जिज्ञासु भक्त, जिज्ञासु भक्त जो होता है उसे जिज्ञासा है जानने की, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा अथ तो भक्ति जिज्ञासा। भक्ति क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, सब कुछ जानना चाहता है। व्हाट इज वेदांता, विदेशी भारत में आते हैं पूछते हैं व्हाट इज गॉड, जिज्ञासा है, बहुत तीव्र जिज्ञासा जानने की। और चौथा भक्त है ज्ञानी भक्त। गीता में लिखा है जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो गोपियों की जो अवस्था है बहुत ऊंची अवस्था दिखाई है भागवत में, उनके लिए जैसे श्री कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ऐसी उनकी कंबाइंड संयुक्त अवस्था। बाबा कह रहे हैं कंबाइंड भव। महाराष्ट्र में संत हुए हैं संत तुकाराम, एक जगह लिखा है उन्होंने मराठी में, काम क्रोध निमले ठाईचे झाला स्वयमेव पांडुरंग। काम क्रोध विकार सब हट गए और मैं खुद अब पांडुरंग, स्वयं मैं कृष्ण बन चुका हूं। यह अवस्था है पराभक्ति की। भक्ति और दो प्रकार की है, एक वैधी भक्ति एक रति भक्ति। रति भक्ति सर्वोच्च भक्ति है, बहुत ऊंची। वैधी भक्ति अर्थात पूजा पाठ आरती सब कुछ करते रहना, कर्मकांड। और जो सर्वोच्च भक्ति है सबसे ऊंची भक्ति है, जिसमें ऐसा अनुभव होता है कि जैसे वो और मैं एक ही हूं। इतना परमात्मा की याद है, इतना प्रभु का प्रेम है, चाहे उसका परिचय हो या ना हो, भक्तों को परिचय नहीं था फिर भी प्रेम कितना था। दिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु को, हे कृष्ण हे कृष्ण। जब होश में रहते थे तो संकीर्तन करते थे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब बहुत ज्यादा संकीर्तन करते करते थोड़ी सी भाव समाधि की अवस्था आ जाती थी, वो दूसरी अवस्था है उनके मन की। और तीसरी एक अवस्था थी बिल्कुल बेहोश हो जाते थे। कंबाइंड भव अर्थात वो और मैं एक। तो का मने होती तुझी माझी एक ज्योति, दो ज्योति नहीं रही एक ज्योति हो गई है। माई फादर एंड आई आर वन, जीसस क्राइस्ट कहता है कि अब वो अवस्था नहीं है कि आई एम हिज सन ऑफ गॉड, माई फादर इज इन मी एंड आई एम इन माई फादर, मेरा पिता मुझ में है और मैं उसमें हूं। और अंत अवस्था है माई फादर एंड आई आर वन, वो और मैं एक हूं। ये चित्त की चेतना की अवस्था है। अध्यात्म मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अनुभव होने लगता है कि वो यहां बिल्कुल हम एक हो गए हैं। तो बाबा ने आज की मुरली में वरदान दिया है। दूसरा आज की मुरली में एक स्लोगन दिया है, विधि विधान और विधाता। विधि विधान और वरदान, विधि से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। कोई भी चीज यदि करना है विधि बराबर चाहिए, चाहे अमृत वेला चाहे मुरली सुनना सुनाना मंथन करना भाषण देना लिखना भोजन बनाना योग युक्त भोजन बनाना। 82 की मुरली बाबा ने कहा है ये जो भोजन है दुख भंजक भोजन है, ब्रह्मा भोजन अर्थात दुख। 86 की मुरली दुख भंजक, यदि तुम योग युक्त होकर भोजन बनाओगे और खाओगे तो 50% प्यूरिटी वैसे ही आ जाएगी। अव्यक्त बाबा का संदेश है एक जगह ये, यदि कोई योग युक्त होकर भोजन बनाता है और योग युक्त होकर खाता है तो 50% पवित्रता स्वतः ही आ जाएगी। विधि से सिद्धि, स्लोगन दिया बाबा ने विधि, दूसरा है विधान। विधान अर्थात लॉज। मुरली में एक प्रश्न है पीछे, एयर कंडीशन सीट किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? जो कंडीशंस को फॉलो करेंगे, अमल में लाएंगे, जो ये कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे, वो एसी में नहीं आ सकते। कंडीशंस, लॉज, नियम, मर्यादाएं, ईश्वरीय संस्था, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो भी नियम और मर्यादाएं हैं, वो हमें पता रहने चाहिए। कौन से नियम है, कौन सी मर्यादाएं हैं? तो नियम और मर्यादाओं का ज्ञान, यदि कंडीशन पर चलोगे तो एयर कंडीशन में जाओगे, यदि विधान का पालन करोगे तो विश्व निर्माता बनोगे। तीसरा बाबा ने बताया वरदान, यदि वरदान दोगे तो वरदानी मूर्त बनोगे। तो आज की मुरली का टॉपिक भी यही है, विधि, विधान और वरदान, और यही बाबा ने अंदर मुरली में कहा है, ये स्लोगन है। लौकिक परिवार से मिलते हुए बाबा ने उनको एक गिफ्ट दी है, लिफ्ट की गिफ्ट, गिफ्ट की लिफ्ट। उसमें चार प्रकार की गिफ्ट है, एक है स्नेह, दूसरा सहयोग, तीसरा शक्ति और चौथा गुण। इनको दूसरों को देते चलना है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, सहयोग के नोट कहां होने चाहिए? तुम्हारे जेब में। एक दूसरे को सहयोग देना है, किसमें? आगे बढ़ाने में। मुरली में प्रश्न है दूसरे नंबर का, क्या है? परमार्थ और व्यवहार में आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? पहले आप, दूसरों को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाना, दूसरों को ज्ञान योग में आगे बढ़ाना, सारी सेवाएं करना और स्वयं को छिपा देना, ये तीव्र पुरुषार्थ है। ये ना हो कि हमारा नाम हो, हमारा नाम लिया जाए, हमने भी तो सेवा की थी, हमने भी तो प्रोग्राम में ये किया था, सब कुछ किया और बहन जी ने हमारा नाम ही नहीं लिया। कई लोग उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हमने इतनी भाग दौड़ की सेवा में और हमारा कहीं नाम ही नहीं है। आभार प्रदर्शन हो रहा है, सारों का नाम ले रहे, हमारा नाम ही नहीं है। क्या नाम के लिए कर रहे थे? जो श्रेष्ठ कार्य हम करते हैं स्वतः ही जमा हो जाता है, किसी के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आपस में क्या देना है? सहयोग, स्नेह, सहयोग, गुण और शक्ति, इनका क्या करो? गिफ्ट दो। तो मुरली में एक स्लोगन, एक ब्लेसिंग और चार गिफ्ट। और बहुत बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स है। दीदी दादी से मुलाकात में बाबा ने कहा है, तुम जहान के नूर हो, बाप की आंखों के नूर हो, सदैव यह स्मृति रखो कि करण करावनहार करा रहा है और हम करणहार कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो करा रहा है, ये कार्य उसका है, अहंकार नहीं। वर्णन नहीं, मम्मा 3 मास तक बेंगलोर रही, बहुत सारी सेवाएं की, 3 मास के बाद आई, मम्मा से पूछा गया, मम्मा क्या क्या सेवा की, सेवा कैसी थी? मम्मा ने कहा, सेवा अच्छी थी, फुल स्टॉप, बस, कोई वर्णन नहीं उसका। सेवा कैसी थी? अच्छी थी। वो तो साथ में जो भाई आया था उसने बताया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, मम्मा ने कोई वर्णन नहीं। बाबा ने कहा, यदि तुम सेवा करते हो और उसका बहुत वर्णन करते हो, मार्क्स कट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मार्क्स कट हो जाते हैं। हम क्या सेवा कर रहे हैं? क्या संगम यज्ञ पर हम कुछ कर रहे हैं? कराने वाला वो है। महाभारत में दिखाया है कि कृष्ण जाने के बाद युधिष्ठिर जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, घरों में चोरियां होने लगती है, ताले लगते हैं घरों में जो आज तक नहीं लगे थे। आश्चर्य होता है ये सब क्या हो रहा है राज्य में। दिखाया है अर्जुन वहां से जा रहा है आबू की पहाड़ी के पास से, वहां से भीलों ने उसको लूट लिया और उधर से संदेश आता है। वो पूछता है जाओ जाकर कृष्ण को बुलाओ। संदेश वहां का आता है, कहता है कृष्ण तो गए। मतलब अब तक जो कुछ हो रहा था कौन कर रहा था? भीम को लग रहा था मैंने लड़ाई जीती, अर्जुन सोचता था मेरे जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं, पर करा कौन रहा था? उसमें दिखाया है सब कुछ भगवान करा रहा था। हमारा क्या सामर्थ्य? संगम पर सारी सेवाएं कौन कर रहा है? वो कर रहा है, हम नहीं। ये उसका सामर्थ्य है, ये उसकी दया कृपा अनुकंपा है, हमारा कुछ भी नहीं है। जैसा वो रखे, जैसा वो चलाए, जैसा वो खिलाए, राजी तेरी रजा में सुबह कहा था। Thy will shall be done, होई सोई जो राम रची राखा, का को करे तर्क बढ़ावे साका। क्यों तर्क करते हो? जैसी उसकी इच्छा। इसे कहा जाता है निमित्त भाव। करण करावन हार करा रहा है, मैं केवल निमित्त हूं, मैं केवल करण हार हूं, मेरी डोर उसके हाथ में है। एक उदाहरण है बहुत सुंदर भक्ति का। एक भक्त था जो अतिशय राम भक्त था, जुलाहे का काम करता था और कहता था कोई गिराई का आया तो ये वस्त्र ये कपड़ा कितने का दिया, तो वो कहता था राम की इच्छा से ये कपड़े का मूल्य जो है मैंने इसको एक आने में खरीदा, 50 आने में इसकी सिलाई की और 50 आने मेरा फायदा, तो 2 आने का ये ऐसा कपड़ा है। इस तरह से वो बात करता था राम की इच्छा से, राम की इच्छा से। एक बार दुकान बंद करके घर में आता है, बैठा रहता है तो वहां से डाकुओं की टोली आती है। वो डाकू उसको पकड़ लेते हैं ये सोचकर कि अच्छा तगड़ा व्यक्ति है, हम जो भी चोरी करेंगे इसके सिर पर लादेंगे और इसको ले जाएंगे साथ साथ। तो दिखाया है वो राजमहल में प्रवेश करते हैं, बहुत सारा खजाना लूटते हैं वो सारे डाकू और सारा उसके सिर पर रखते हैं। उतने में सिपाही देख लेते हैं और डाकू भाग जाते हैं और वो पकड़ा जाता है। उसको पकड़ के कारावास में डाल दिया जाता है। दूसरे दिन राजा के सामने प्रस्तुत होते हैं। तब तक उसके गांव के भी लोग आ जाते हैं, ये तो इतना भोला है, इतना भक्त है, ये चोरी कैसे कर सकता है? फिर भी राजा कहता है मैं देखूंगा। तो राजा उससे पूछते हैं बताओ क्या कहना है तुमको? तो वो कहता है हुजूर राम की इच्छा से मैं अपने दुकान में बैठा था, दुकान पूरा किया और राम की इच्छा से मैं अपने घर आया, और राम की इच्छा से मैं सामने बरामदे में बैठा था तब राम ही की इच्छा से डाकुओं की एक टोली वहां आ गई और राम जी की इच्छा से उन्होंने मुझे पकड़ लिया और फिर राम जी की इच्छा से वो मुझे अपने साथ साथ ले गए और फिर राम जी की इच्छा से उन्होंने राजमहल का सारा खजाना लूटा और राम की ही इच्छा थी कि वो खजाना उन्होंने मेरे पीठ पर लादा और राम की ही इच्छा से उसी समय आपके सिपाही वहां आ गए और राम की ही इच्छा से आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया और फिर राम की ही इच्छा से मुझे सारी रात जेल में डाल दिया और राम की ही इच्छा से हुजूर मैं अभी आपके सामने आया हूं। राजा सोचता है ये तो बड़ा, ऐसा व्यक्ति चोरी कैसे कर सकता है, इतना परायण, वो जैसे कुछ कर ही नहीं रहा है, सब कुछ उसकी इच्छा से हो रहा है। तो राजा उसको कहता है ये तो निर्दोष है, इसे छोड़ दो। तो वो अपने गांव वाले जो लोग उसको लेने आते हैं वहां पर उनके साथ जाने लगता है और कहता है देखा राम की इच्छा से राजा ने मुझे छोड़ दिया। इतना समर्पण भाव है भक्ति मार्ग में दिखाया है कि सब कुछ वो करा रहा है, सब कुछ उसकी इच्छा से हो रहा है। इतने अड़ोल रहे वो भक्त जो कि अज्ञानी थे, जिन्हें संपूर्ण ज्ञान नहीं था। हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है और भगवान स्वयं कह रहा है कि मैं करण करावन हार हूं, तुम करण हार हो। ज्यादा नहीं सोचो, सोचने से नहीं होगा। यहां पर एक पर्सनल मुलाकात है जिसमें बाबा ने कहा है सावित्री बहन से, सोचने से नहीं होगा, स्वतः होगा। एक अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जब तुम मेरी याद में मगन रहोगे तो तुम्हारे लिए सोचने का काम मैं करूंगा। लिख लो इसको। जब तुम मेरी याद में मगन रहोगे तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। असोच भव, क्या वादान है, असोच भव। वो करा रहा है निमित्त भाव, नम्रता का भाव अपने जीवन में लाना है। बाबा डबल विदेशियों से भी मिल रहे हैं। बाबा ने कहा इनकी एक विशेषता है और वो विशेषता है विशेष लगन। इनकी विशेष लगन के कारण मैं आया हूं। ये भी विदेशी, मैं भी विदेशी, ब्रह्मा भी विदेशी, विदेशी विदेशियों का मिलन हो रहा है। क्रिसमस का दिवस है, बड़ा दिन, इसलिए बाबा कह रहे बड़ा दिन है, बड़े बाप, बड़ा बाप है और बड़े बच्चे हैं, सब बड़ा है। बड़ा दिन अर्थात उमंग उत्साह का दिवस, बड़ा दिन अर्थात उत्सव का दिवस, बड़ा दिन अर्थात सदा उमंग उत्साह में रहने का दिवस। मराठी में संत कहता है विठोबाचे राज्य आम्हा नित्य दीपावली। उस कृष्ण के राज्य में हर दिन दीपावली है। तो क्या हम करें कि जीवन का उमंग उत्साह कभी भी कम ना हो। बाबा कह रहे समझो ये बड़ा है, बड़ा समझोगे तो बड़ा हो जाओगे, हर दिन को बड़ा समझोगे तो बड़ा बन जाओगे। जीवन में कभी उदासी ना आए, कभी दिल शिकस्त ना हो, ज्ञान योग के प्रति इंटरेस्ट कम ना हो जाए। हम देखते हैं ज्ञान मार्ग में चलते चलते कई लोग ऐसे होते हैं इंटरेस्ट कम हो जाता है, सेंटर पे आना बंद कर देते हैं, घर पर ही मुरली सुनते हैं, इंटरेस्ट कम हो जाता है। कभी कभी जाएंगे गुरुवार एक दिन, ऐसे कई सारे भाई बहने हैं पिछले 2-3 साल से एक बार भी मधुबन नहीं गए हैं, ऐसे भी है। कुछ दिन पहले, 1 मास पहले एक मुरली चली थी, बाबा ने कहा बाबा से मिलने तो तुम्हें कैसे आना है, दौड़ दौड़ के आना है। जैसे वो एक स्त्री जिसका पति कहीं से आ जाता है तो बावरी सी गलियों में घूमती है क्योंकि उसका पति आया है, दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर बाबा से मिलने आना है। क्या कारण है कि जिसके वजह से उमंग कम हो जाता है, उत्साह कम हो जाता है, निरस हो जाता है जीवन, लगता है मुरली में क्या पढ़ना है, वही वही तो है। बाप को याद करो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, आत्मा समझो, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ो, काम महा शत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, बाप आए हैं, तुम्हें स्वर्ग चलना है, दुनिया का विनाश होने वाला है, विनाश सामने खड़ा है, मौत का बाजार गर्म होगा। अब बचा क्या ज्ञान में, कुछ है तो बताओ नया, क्या जाना है, वही 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 रोज रोज रोज। बाप तुम्हें पढ़ाते हैं विश्व की बादशाही देने आया है, पुरानी दुनिया को भूलो, नई दुनिया को याद करो, बाप को याद करो, परम धाम को याद करो, फॉलो फादर करो, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। यही तो है कि और भी कुछ है, चक्र 5000 साल का है, अभी संगम युग है, कलयुग पूरा हुआ, वो है विकारी दुनिया, तुम्हें चलना है श्रेष्ठाचारी दुनिया में। अब और क्या पढ़े, ये तो घर पे भी पढ़ सकते, अब वहां जाने की क्या जरूरत है? योग आश्रम है, सेवा केंद्र क्या है? योग आश्रम। वहां जो निमित्त बने हैं वो सब कौन है पता है? कौन है वो सब? जो बहने वहां पर है वो सब कौन है? शिव शक्तियां है। उन्हें साधारण समझने की भूल ना करना। मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वही है वो, यज्ञ की वेदी पर अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाली आत्माएं क्या साधारण हो सकती है? यज्ञ की वेदी पर अपना संपूर्ण यौवन और जीवन अर्पित करने वाली अर्पिता, समर्पिता और निवेदिताएं क्या साधारण आत्माएं हैं? ऐसी बाल ब्रह्मचारिणी अनटच्ड भगवान ने जिन्हें निमित्त बनाया है, क्या वो साधारण है? भगवान ने अधिकार दिया है, अपना गुरु भाई कहा है उन्हें, किसी में इतना साहस नहीं कि इसको पढ़ सके उस संडली पर बैठकर। अखंड ब्रह्मचारिणी संसार के भोग और उपभोग का त्याग कर वहां रहना कितनी बड़ी, कितना बड़ा त्याग है। चाहती तो वो भी कुछ कुछ कर सकती थी, चाहती तो वो भी नौकरी कर सकती थी, पैसा कमा सकती थी, संसार के सुख उपभोग कर सकती थी, जीवन को अर्पण किया है परमात्मा कार्य के लिए। ये नहीं समझना कि ये कम समझदार है, ये नहीं समझना ये कम पढ़ी लिखी है, ये नहीं समझना इनको जीवन का अनुभव कम है। चाहे कुछ भी हो, उन्हें वहां निमित्त बनाने वाला कौन है? किसने चुना है उन्हें? इसलिए उनके प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प, कोई भी निगेटिव संकल्प, किसी भी प्रकार का षड्यंत्र करने का प्रयत्न भी मत करना। उनके सिर पर स्वयं भगवान की छत्र छाया है। भगवान ने रखा है अपने स्थान पर उनको, सेवा केंद्र इंद्रप्रस्थ है, इंद्र का दरबार है, जिसे स्वयं भगवान ने वहां रखा है, उनके प्रति जरा भी मन में दुर्भाव कम भाव न हो। उनसे नाराज होकर कई लोग आना छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे पहला तो सेवा केंद्र का महत्व क्या है समझो। स्वयं यज्ञ कुंड है वो, मधुबन ही समझना उसको भी। नियमित वहां जाना, क्योंकि वहां का वातावरण होता है उसमें एक अलौकिक प्रवाह और प्रभाव होता है। घर में तो पढ़ा जा सकता है इसको, परंतु कैसे समझ पाओगे? क्या ये इतना आसान है इसको समझना कि हम पढ़ ले और समझ ले? इसको समझने के लिए ये उसी मुख से निकलने चाहिए जो कि पवित्र है। केवल पवित्रता के आधार पर इन शब्दों को समझा जा सकता है, नहीं तो संसार में तो हिंदी जानने वाले कितने हिंदी के प्रोफेसर हैं। हमें याद है हमारे हॉस्पिटल में एक बार हिंदी की प्रोफेसर आई थी, एमए और क्या क्या थी उसके पास। अभी अभी 6 मास हुए थे ज्ञान में आए, हमने उनसे कहा था कि आप मुरली पढ़ो संडली पर बैठ के। उन्होंने कहा मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं वहां बैठूं। इसको पढ़ने के लिए पावर चाहिए। सबसे पहले बात सेंटर, दूसरी बात सेवाएं। जो सेवाएं हो रही है किसी की व्यक्तिगत सेवा नहीं है, ईश्वरीय सेवा का यह कार्य है। जो कुछ यज्ञ में दिया जा रहा है सब कुछ जमा होते जा रहा है। गरीबों के पाई पाई से परमात्मा तालाब भरेगा। और जो बात कही ज्ञान के मंथन की, जिसका अकाल आ गया है, मंथन अकाल, केवल मुरली सुनना और सुनाना इतना ना हो, उसका मनन करना है, उसका अध्ययन करना है, उसके ऊपर चर्चा करनी है, आपस में ज्ञान का वार्तालाप, ज्ञान डिस्कशन हो। अगर ज्ञान डिस्कशन, ज्ञान की चर्चा होती रही तो कभी उमंग उत्साह कम नहीं होगा। तो बाबा ने कहा बड़ा दिन अर्थात उमंग उत्साह, बड़ा दिन अर्थात सदैव उत्साह में रहना। उसके लिए बड़ा जो बाप है उसको निरंतर याद करना, निरंतर अपने याद के चार्ट को बढ़ाते जाना। सेवाओं में जितना हो सके निस्वार्थ, सेवाओं में जितना हो सके निर्माण, सेवाओं में जितना हो सके नेकी कर, दरिया में डाल, भूल जाओ। सेवा हो गई, कर दिया, काम पूरा हुआ, अब आगे बढ़ो। उसका वर्णन ये ना सोचो कि वो लोग हमको ये करे, हमें कुछ स्तुति करे, महिमा करे। किसी की स्तुति के लिए हम सेवा तो नहीं कर रहे ना। तो बड़े दिन की बात की, और सबसे पावरफुल महावाक्य आज की मुरली से जो सुबह भी हमने कहा था, श्रेष्ठ संकल्प, एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चों का और 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का फल बाप दादा बदले में रिटर्न में देते हैं। तो अपने पास श्रेष्ठ संकल्पों की लिस्ट बनानी है, हर दिन मुरली से 5 श्रेष्ठ संकल्प निकाल लेने हैं। आज की मुरली में कौन सा पावरफुल पॉइंट है जो एकदम मेरे जीवन को बदल सकता है, केवल उतना ही। सारी की सारी मुरली लिखने से अच्छा कुछ ही पॉइंट्स लिखो, 5 या 10 बस, और फिर छोटी सी डायरी में लिखकर उसको दिन भर में देखते रहो, रिवाइज करते रहो। अगर कोई मिल जाए तो उसको कहो कि देखो आज बाबा ने ये कहा, आपस में बात करनी है। अगर कोई अज्ञानी भी है उसको भी आप बोल सकते हो कि देखो हमने कहीं सुना है एक अच्छी पॉइंट, कि आपस में सहयोग दो। कोई बाहर वाला है तो मुरली की पॉइंट उसको भी सुना सकते हैं, परंतु हमारे मुख से मुरली निकलनी चाहिए। सभी माताएं करेंगी ये काम, आपस में कौन सी चर्चा करेंगे, किसकी बहू और किसकी सास और किसकी ननंद, ये चर्चा करेंगे कि बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा, ये चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे? बाबा ने क्या कहा, इसकी चर्चा करनी है। बाबा ने देखो आज इतनी अच्छी पॉइंट की, क्या तुमने आज का वरदान पढ़ा, देखो कितनी पावरफुल पॉइंट है। वो कहेंगे अच्छा क्या है, तो फिर बताना। इसे कहते हैं ज्ञान वार्तालाप, ज्ञान चर्चा। श्रेष्ठ संकल्पों की लिस्ट खजाना बुद्धि में भरा हो। बाबा ने एक जगह और कहा है, जितना तुम अपने भाग्य को नहीं जानते, बाप तुम्हारे भाग्य को जानता है। दूसरी लिस्ट बनानी है, मैंने क्या क्या पाया, भाग्य की लिस्ट। कौन सी लिस्ट बनाएंगे? मेरे भाग्य की लिस्ट। बाबा के जब से बने तब तक क्या पाया, पहले क्या थे और अब क्या बन गए, भाग्य की लिस्ट, खजानों की लिस्ट, प्राप्तियों की लिस्ट लिखना है रोज, नई नई पॉइंट्स, ताकि उमंग उत्साह रहे, नहीं तो उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। बाप आए हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। यह नशा कितना समय चलेगा? आज भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, दूसरे दिन अरे स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, भगवान 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 पढ़ाते हैं। 10 साल हो गया, अभी नशा ही खत्म हो गया। ये वाक्य इधर से सुना और इधर से चला गया। जैसे जैसे समय बीतता है नशा सूक्ष्म होता जाए, और नशा जब सूक्ष्म हो जाता है उसे कहते हैं समान। नशे को समान में रूपांतरित कर दो। हिम्मत की भी बात बाबा ने की। ये मुरली थोड़ी अलग प्रकार की है, कोई एक प्रवाह नहीं है मुरली में, अलग अलग ग्रुप से पर्सनल मुलाकात जैसे बाबा मिल रहे हैं। सच्ची दिल मुराद हासिल, एक जगह ये भी कहा। हिम्मत रखो तो बाप मदद करेंगे, ये भी किसी और एक जगह कहा। अलग जगह, अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट्स है। बिखरी है मुरली, एक पॉइंट ले लेना। जैसे हमने लिया सच्ची दिल तो मुराद हासिल, इस पर लिखना कि सच्ची दिल अगर है तो क्या क्या हो सकता है। लिखना है, जो लिख सकते हैं लिखे, जो लिखते नहीं है वो एकांत में जाकर चिंतन करे। हमारा कोई भी समय व्यर्थ ना जाए। चलना फिरना घूमना, अंदर ही अंदर ज्ञान का मंथन चलता रहे सूक्ष्म। जब ऐसा चलता रहेगा तब जब हम बैठेंगे योग के लिए तो एकदम से योग लगेगा, नहीं तो सारे दिन भर व्यर्थ की बातें, सांसारिक बातें, और फिर योग में आकर बैठते हैं और वही सारा घूमते रहता है, वही दिखते रहता है, वही याद आते रहता है। क्या ये योग है? इसे योग नहीं कहते। जिन्होंने आज की ये मुरली नहीं पढ़ी है वो इसको रात में सोने से पहले जरूर पढ़े। केवल मुरली सुननी नहीं है, एक बार सुनना और एक बार पढ़ना, इसको नियम बना दो। हर दिन एक बार मुरली पढ़नी जरूर है। अब मुरली कहां से आएगी ये आप सोचो। आजकल मोबाइल पर सब कुछ है, जिनके पास नहीं है वो उसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं। ढूंढो तो मिलेगा। सर्च एंड यू शैल फाइंड, आस्क एंड इट शैल बी गिवन, नॉक एंड इट शैल ओपन। बाइबल में लिखा है खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा, ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो मैं दूंगा। ऐसे ही बैठे रहो कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, ऐसे नहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा। क्या मार्ग है? जहां चाह होगी वहां मार्ग खुलेंगे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इंटरनेशनल, हमारा तो हर संडे होता है, थर्ड संडे है, तो आज थर्ड संडे इंटरनेशनल योग है। तो हमें इस क्लास को हम यही पूरा करते हैं। जिसको उठना है 2 मिनट के लिए उठ सकते हैं, और फिर हमको पावरफुल 1 घंटे के लिए योग करना है, ठीक है? और हफ्ते में तीसरा रविवार सारे विश्व को हम लोग सकाश देते हैं, तो जिनको उठना है वो उठ जाइए और तुरंत वापस आ जाएंगे 5 मिनट के अंदर।